नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्षेत्र में हवाई संपर्क से तेज और व्यापक विकास होता है। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत में लगभग 70 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास कई हवाई अड्डों का भी विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोटा हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए के नए द्वार खोलेगा।
कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान में विकास के कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में कई दशकों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मांग थी और अब ये सपना साकार हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इनमें सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का उत्थान शामिल है। आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने आज पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान सिलीगुड़ी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल आदिवासी सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश भर में अतिक्रमण और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने ये बात हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। श्री शाह ने राज्य के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए।
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई, 2028 में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा।
हैदराबाद में आज समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र में 130 माओवादियों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समक्ष समर्पण कर दिया। इस गुट में राज्य समिति के 3 सदस्य, क्षेत्रीय समिति के 1 और प्रादेशिक समिति के 10 सदस्य शामिल हैं। समर्पण करने वाले माओवादियों ने 124 अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी सौंपा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों के समर्पण को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जनवरी 2024 से अब तक 721 माओवादी मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के उत्थान का आकलन उसकी शक्ति के आधार पर किया जाएगा, न कि दूसरे देशों की गलतियों के आधार पर। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने भारतीय कंपनियों को फिनलैंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। वे आज मुंबई में आयोजित भारत फिनलैंड व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अस्थिर व्यापार नीतियों के कारण कई अन्य देश अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं। नेपाल में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 55 के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं। शीर्ष स्थानों पर मतगणना जारी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 76 निर्वाचन क्षेत्रों से आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के लोगों को चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण संचालन पर बधाई दी है। इसके साथ ही